اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، میرے پہ ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں، رضا کے ہم ہیں خادم وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام اور ہیروز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ آج پھر ایک نئے ہیرو کے انٹروڈکشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آج ہم جس ہیرو کے بارے میں بات کریں گے ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور ہم سب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب بھی ظلم اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کی بات آئے، ان کے سامنے کھڑے ہو جانے کی بات آئے، جب بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی بات آئے، ہمارے ذہن میں انہی کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہمارے ہیرو سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی ہاں، ان کا انٹروڈکشن آپ کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں بچوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا مجرب وظیفہ ہے جو انسان کے تمام غموں، مصیبتوں، بیماریوں اور حاجتوں کے حل کے لیے کافی ہے۔ پیارے بچوں، جو درود پاک پڑھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ شعر ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر حاجت کا حل درود پاک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ہیرو کے انٹروڈکشن کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے کئی القاب ہیں جن میں سے ایک سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو اور اپنے نواسے امام حسین سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے امام حسین کی شان میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حسن اور حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اسی طرح دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ہیرو امام حسین رضی اللہ عنہ میں بہت ساری کوالٹیز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری کرامات بھی تھیں۔ پہلے آپ کو ایک کرامت سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام حسین سے عرض کی کہ میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ برکت کی دعا کر دیجئے۔ امام حسین نے اس کنویں کا پانی منگوایا۔ جب پانی کا ڈول لایا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی پیا اور کلی کی، پھر بالٹی کو واپس کنویں میں ڈال دیا، تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی امام حسین کی کرامت۔ اب آئیے آپ کو ان کی کوالٹیز پر کچھ بتاتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے ہیرو حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی طرح بہت سخی تھے، بہت زیادہ تقسیم کیا کرتے تھے اور لوگوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی غربت کا، اپنی فقیری کی کمپلین کی، تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1,000 سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ اب ہمارے ہیرو امام حسین کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، اور اس غریب آدمی کو انتظار کروانے پر اس سے معذرت بھی کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص مدینے کی اسٹریٹس میں مدد کے لیے گھومتا گھومتا آپ کے دروازے پر آیا۔ اب اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کی آواز سن کر آپ نے نماز جلدی ختم فرمائی اور اب باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے خادم کو آواز دی، خادم حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ باقی رہ گیا ہے؟ खादिम ने जवाब दिया कि आपके 200 दिरहम चांदी के सिक्के अहले बैत में तकसीम करने के लिए दिए थे, वो अभी तक तकसीम नहीं किए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि वो ले आओ। और आपने वो सारे के सारे 200 दिरहम उस गरीब शख्स को दे दिया और उससे माजरत भी की कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए बस यही दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे थे हमारे हीरो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कि एक तो मदद भी करते थे और फिर ज़्यादा मदद ना करने पर उनसे माजरत भी करते थे। आपको गरीबों और ज़रूरतमंदों का कितना ख्याल था और आप उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी सिंपथी थी, इसका अंदाज़ा इस वाक्ये से भी कीजिए कि एक मरतबा इमाम हुसैन के पास उनकी जौजा आई और कहा कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया है, लिहाजा आप अपने दोस्तों को लेकर आ जाएं। इमाम हुसैन दोस्तों को लाने के बजाय मस्जिद गए और वहाँ जो मसाकीन और गरीब लोग थे उन्हें घर लेकर आ गए। फिर आप अपनी जौजा के पास तशरीफ लाए और उन्हें फरमाया कि कुछ बचा कर नहीं रखना, सब कुछ खिला देना। उनकी वाइफ ने ऐसा ही किया। ये थी हमारे हीरो इमाम हुसैन की गरीबों से मोहब्बत और उनका एहसास। हमें चाहिए कि हम भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और दिखावा ना करें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि बेहतरीन माल वही है जो किसी की इज्जत महफूज करने का वसीला बन जाए। इसी तरह आप मुस्तजाबुद दावात भी थे, यानी आप जो दुआ मांगते थे वो फौरन कबूल हो जाती। 10 मुहर्रम के दिन जब मैदान करबला में दुश्मनों के सामने खुतबा दे रहे थे तो उस वक्त आपके खैमे की तरफ हिफाजत के लिए जलने वाली आग को देखकर एक दुश्मन इस तरह बकवास करने लगा कि ए हुसैन, तुमने वहाँ की आग से पहले यही आग लगा दी। हमारे हीरो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है, क्या तुझे ये गुमान है कि माजल्ला मैं दोजख में जाऊँगा। फिर इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, ए रब्बे कहार, इस शरीर को अजाब नार से पहले इस दुनिया की आग के अजाब में मुबतला फरमा। दुआ फौरन कबूल हुई और उसके घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख पर पड़ा जिससे झटका लगा घोड़े को और वो बेअदब और गुस्ताख यजीदी शख्स घोड़े से गिरा और घोड़ा उसका घसीटता हुआ दौड़ा और आग वाली खंदक में डाल दिया और वो बदनसीब आग में जलकर मर गया। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, या अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। प्यारे बच्चों, ये थी इमाम हुसैन की करामत, आपकी सखावत और आपकी दुआ। और अब हम बात करने लगे हैं हमारे इमाम हुसैन की करेज और ब्रेवरी की, बहादुरी की। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा बहादुर थे। आपकी बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रेबल्स ने जब हज़रत उस्मान के घर को घेर लिया तो हज़रत अली ने इस मौके पर अपने दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन को भेजा और इमाम हुसैन ने इमाम हसन के साथ मिलकर इन बागियों का डट कर मुकाबला किया और आपने किसी एक भी बागी को अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से वो बागी फिर पीछे के रास्ते से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के घर में दाखिल हुए थे। और फिर करबला का मैदान तो ज़र्रा ज़र्रा आपकी बहादुरी की गवाही देता है। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के तमाम मुजाहिद शहीद हो गए तो आखिर में आपने मैदान जंग में जाने का इरादा फरमाया। मैदान जंग में जाने से कबल आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा अपने सर पर सजाया, हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश्शुहदा की शील्ड अपनी पीठ पर रखी, शेर खुदा मौला अली अपने बाबा की तलवार गले में लटकाई और जाफर तैयार का स्पेयर हाथ में लिए आप मैदान जंग की तरफ गए। हमारे हीरो इमाम हुसैन उस वक्त बिल्कुल अकेले थे और आपके सामने एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराए। आपने दुश्मनों को ललकार कर फरमाया कि तुम लोग जो चाहते हो कर लो और जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेज दो। तो सामने से इब्ने साद ने सबसे पहले तमीम नामी एक शख्स को भेजा जो मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा ग्लैडिएटर था। वो गुरूर और तकब्बुर में झूमता हुआ आगे बढ़ा और अपनी बहादुरी की बातें करते हुए इमाम हुसैन के सामने आया और सामने आते ही उसने आप पर हमला करना चाहा। अभी उसका हाथ उठा ही था और हवा में ही था कि इमाम हुसैन ने ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि उसका काम तमाम हो गया। फिर एक और शख्स आगे बढ़ा और उसने आपके सामने पहुँच कर एक नारा मारा और कहा कि शाम और इराक में मेरी बहादुरी की रेपुटेशन है, बड़े बड़े बहादुरों को मैं कुछ ही लम्हों में मार गिराता हूँ, सारे पहलवान मेरे सामने बकरियों की तरह हैं और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसकी ये बातें सुनकर हमारे हीरो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने गर्ज कर उसे जवाब देते हुए फरमाया, तुम मुझे नहीं जानता, मैं फातेह खैबर मौला अली का बेटा हूँ और तुम जैसे लोगों की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। जब उस शख्स ने इमाम हुसैन की ये बातें सुनी तो वो गुस्से में आ गया और फौरन आपकी तरफ दौड़ा और उसने वार किया, लेकिन इमाम हुसैन ने पीछे हट गए और फिर उस पर पलट कर ऐसा वार किया कि वो अगले लम्हे ज़मीन पर था। इसी तरह इराक और शाम के जो लोग इमाम हुसैन के मुकाबले में आते वो बचकर वापस न जाते। हमारे हुसैन 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी शुजात और बहादुरी का ये आलम था कि बड़े बड़े पहलवान आपके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जब दुश्मन की फौज ने अपने बड़े बड़े बहादुरों की ये हालत देखी तो फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया और दुश्मनों ने चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया और एक साथ हमला किया, लेकिन इस तरह भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो जब इब्ने साद ने देखा कि इस तरह भी कुछ नहीं हो पा रहा तो उसने हुक्म दिया कि एरोस चलाए जाएं, तीर चलाए जाएं, और जब ये जख्मी हो जाएं तब इन पर हमला किया जाए। लिहाजा दुश्मनों ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से आप घोड़े से गिर गए और फिर एक शख्स ने स्पेयर से वार किया और आपके जिस्म मुबारक पर 72 जख्म खाकर 56 साल की उम्र में जुम्मे के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को आप शहीद हो गए। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे हीरो इमाम हुसैन, जिनका सर हक की खातिर कट तो गया लेकिन झुका नहीं। प्यारे बच्चों, साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम हमें शहदाए करबला बिलखसूस नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की याद दिलाता है, क्योंकि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को तारीख इस्लाम में सच और बातिल के दरमियान एक अजीम एक मौका हुआ था जिसे वाक़ करबला कहा जाता है। इस वाक़े में हमें शहदाए करबला ने यह सबक दिया कि हमेशा बातिल के आगे डट जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो दीन की खातिर अपनी जान भी दे देनी चाहिए। अगर इमाम हुसैन यजीद की बेयत कर लेते तो यजीद की सारी आर्मी आपके कदमों में होती, सब आपका एहतराम करते, आपके लिए खजानों के अंबार लगा देते, लेकिन आपको दुनिया की बिल्कुल फिक्र ना थी क्योंकि आप तो जन्नत के शहजादे और सरदार थे। इमाम हुसैन ने दुनिया के ऐश को लात मारी और हक के रास्ते में आने वाली हार्डशिप्स का सामना किया और पीछे ना हटे, और बे इंतहा जुल्म के बावजूद आपने यजीद की बेयत ना की। आपने अपना घर लुटा दिया लेकिन इस्लाम की इज्जत पर आपने हरफ नहीं आने दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के हीरो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह पाक हमें भी इमाम हुसैन जैसा बहादुर बनाए और हक की राह पर चलने वाला बनाए। कितने लोग ऐसे हैं आजकल की दुनिया में जो मुश्किल चीज़ों से भाग जाते हैं, मुश्किल रास्तों से भाग जाते हैं और ये समझते हैं कि भागना आसान है। अगर आप खड़े रहें और आप उन चीज़ों को फेस करें, आजकल जो बच्चे हैं वो स्कूल के मामले में, दीन के मामले में, नमाजों के मामले में सुस्ती दिखाते हैं क्योंकि मुश्किल लग रहा होता है, मगर अगर आप उसको करेंगे और उस पर डटे रहेंगे, उसे करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक भी मदद फरमाएगा आपकी, और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कयामत के दिन, हशर के दिन, इंशाल्लाह मरने के बाद जन्नत में इन सब का अजर भी मिलेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारे आज के एपिसोड का वक्त शाम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें आप सजेशंस भी दे सकते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।